آپ SBS اردو کے ساتھ ہیں۔
SBS اردو SBS ساؤتھ ایشین پر۔
شکریہ فضا علی مرزا، آپ نے SBS اردو کے لیے وقت نکالا۔ فضا، آج ہم آپ سے جس موضوع پہ بات کرنے آئے ہیں وہ ہے خواتین کا عالمی دن۔
میں ہر روز ہی خواتین کا دن مناتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک تو میرا گھر ایک بہت ہی خواتین سے بھرپور گھر ہے ماشاءاللہ سے، تو ہم صبح اٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ دنیا بہت خوبصورت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کوئی دن بھی عورتوں کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا، سو ہر روز ہی خواتین کا دن ہے۔ بٹ عالمی دن کے حوالے سے عورتوں کی جد و جہد، ان کی محنت اور ان کی بہادری کو اکنالج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک دن ان کے نام کیا جائے۔ ابھی تو ہم آدھے راستے بھی نہیں آئے اور جد و جہد تو چلتی رہے گی، کوئی جد و جہد ایسی نہیں ہوتی جو ہم ختم ہو جائے، اسپیشلی جب حق کی بات آئے تو حق ملتے ملتے ملتا ہے ایک ساتھ، تو آپ کو پتہ ہے کہ حق نہیں ملتا، لیکن حق کا ملنا شروع ہو جانا اور اس بات کا کو لوگوں نے تسلیم کر لینا کہ یہ چیز حق پر ہے یا یہ ایک رائٹیس بات کی جا رہی ہے اور اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا، وہ چیز وہاں تک لانا عورتوں نے جہاں تک اپنے آپ کو لے کے آ گئی ہیں اس معاشرے کے اندر، چاہے کہ وہ آپ کے ڈرائیونگ کے بیسک رائٹس سے لے کے آپ کے گھر سے نکلنے کے رائٹس تک اور کام کرنے کے رائٹس تک، جو بھی جدوجہد عورتوں نے کی ہے وہ تو فینومینل ہے۔ اس کا تو کوئی میں کہتی ہوں پچھلے 70-80 سال سے پہلے اگر آپ دیکھیں اور آج کی زندگی میں دیکھیں تو بہت بڑا ایک مائل اسٹون ہے جو اچیو ہو چکا ہے۔ کالج جانے سے لے کے، کپڑے پہننے کی چوائسیز سے لے کے، یو نو ایون آج عورت کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے حقوق شادی کے بعد کیا ہیں، شادی سے پہلے کیا ہیں۔ سو ان سب چیزوں کو میرے خیال سے ایک بہت بڑی کامیابی سمجھنا چاہیے اور لگے رہنا چاہیے۔ بالکل۔
اچھا، اس میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس میں مردوں کا کتنا کردار ہونا ضروری ہے، یا انہوں نے بھی کچھ پلے کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ عورتیں، کیونکہ اکثر جو ہے وہ تنہا بھی رہ جاتی ہیں اس طرح کی جد و جہد میں، آپ کو لگتا ہے کہ؟
اچھا، مجھے ایسا لگتا ہے عورت کبھی تنہا نہیں ہوتی، چاہے وہ اکیلی ہو لیکن وہ تنہا نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ایک بہت بڑی سوچ اور ایک بہت بڑی جو ایک ایفرٹ ہے وہ ہمیشہ چلتی رہتی ہے، کیونکہ عورت جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا درخت ہے جس کے اندر سے کئی شاخیں نکلتی ہیں اور وہ شاخیں جو ہیں وہ پھر مزید یو نو پھولوں میں اور پھر مزید بیجوں میں اور پھر مزید درختوں میں کنورٹ ہوتی ہیں۔ تو عورت تو کائنات کو چلانے کا جو ایک نظام ہے اللہ نے عورت سے رکھا ہے، تو عورت تو کبھی اکیلی میری نظر میں نہیں ہوتی، اللہ نے اس کو بہت مضبوط اور بہت جامع بنایا، تو اس لیے عورت کا اکیلے ہونے کا تصور میں نہیں کر پاتی ہوں، لیکن یعنی کہ تنہا ہونے کا، اکیلے تو ہو سکتی ہے لیکن تنہائی جو ہے نا اس کا عورت سے تعلق کم ہے۔ تنہائی جو ہے وہ تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس کچھ نہ بچے، اور عورت کے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ رہتا ہی ہے۔ سو ایک تو یہ ایک میرا اپنا فلسفہ ہے عورتوں کے بارے میں۔ آج جہاں تک آدمیوں کا تعلق ہے، مجھے لگتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ رول ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے، اور جب تک، کیونکہ دیکھیں اینڈ میں منوانا کس کو ہے، بندش کہاں سے آ رہی ہے، کون نہیں سمجھ پا رہا، اپوزٹ سائڈ پہ کون کھڑا ہوا ہے، سارے تو نہیں ہیں لیکن جو ایک میجورٹی ہے اس کو سمجھانا اس بات کا، ان کی ایکسیپٹینس آنا، اور جب وہ اپنے یو نو جو ان کے سیم جینڈر کے لوگ ہیں ان سے اس بات کا ذکر کرتے ہیں اور ایکسیپٹینس کے بارے میں بتاتے ہیں اور ان کو کنوینس کرتے ہیں، تو زیادہ میرے خیال سے آسان رہتا ہے، رادر دین لسننگ اٹ فرام اے وومن۔ اف اے مین از ٹیلنگ یو اباؤٹ وومن رائٹ اور بینگ ایکسیپٹ یو نو لائک ایکسیپشنل ان دا سینس کہ وہ آپ دوسروں سے ہٹ کے اس چیز کو مان رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ ضروری ہے، یا میں اپنے گھر میں رہنے والی عورتوں کے حقوق کو مانتا ہوں، دیتا ہوں، دینا اس کا کام نہیں ہے، صرف ماننا اس کا کام ہے، اس چیز کا ایکسیپٹینس ہونا اس کا کام ہے۔ عورت کے حقوق تو اس کے پاس ہونے ہی چاہیے، آپ نے ضبط کیوں کیا ہے کہ آپ کو دینا پڑے، تو اگر وہ مانتا ہے اور ان کو اکنالج کرتا ہے، اس کو رسپیکٹ کرتا ہے، تو اس سے اس کے ساتھ کے جو باقی ہم اثر لوگ ہیں ان میں بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔
بالکل۔ ایک تو اس میں فلم پروڈیوسر میں ہماری یہاں خواتین کم آتی ہیں اس فیلڈ میں، ابھی بھی اس کو ایک مردوں کا شعبہ ہی کہا جاتا ہے فلم میکنگ کا، تو آپ اس میں آئیں تو آپ آسانی سے آ گئیں۔
ایز اے فلم پروڈیوسر پاکستان میں بالکل کم خواتین ہیں جو اس شعبے کے اندر ہیں۔ میں ایکسیڈنٹلی اس شعبے میں آئی، مجھے فلم میکنگ کا شوق تھا اور انیشلی آئی واز ٹرائنگ ٹو لک انٹو میکنگ فلمز ایز اے ڈائریکٹر، اور جب میں نے ڈائریکشن کی اس وقت मैंने टीवी के लिए ज़्यादा डायरेक्शन की, और विद टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक प्रोड्यूसर की अहमियत क्या होती है और एक डायरेक्टर को एक प्रोड्यूसर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। फिल्म बनाने के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास एक प्रोड्यूसर हो जो अंडरस्टैंड कर सकता हो आपके पूरे एक आइडिया को, आपकी आइडियोलॉजी को। तो मुझे लगा कि शायद इस शोबे में औरतों की ज़्यादा ज़रूरत है, और तभी मैंने स्टेप इन किया इसमें। जहाँ तक मुश्किलात की बात है, मुझे लगता है कि जब आप एक जगह पे पहुँचते हैं तो हर जर्नी के अंदर, यू नो, हर रास्ते के अंदर कुछ मोड़ होते हैं, कुछ रुकावटें होती हैं, कुछ आसानियाँ भी होती हैं, और कुछ लोग आते हैं जो उस सफ़र को आसान बनाते हैं, और कुछ लोग आते हैं जो सफ़र को मुश्किल भी बनाते हैं। तो लेकिन वो सब एक पार्ट ऑफ लर्निंग होता है, और औरतों के लिए अल्लाह ने उनके अंदर एक ख़ास चीज़ रखी है कि रास्ता जितना भी टफ हो वो गुजर जाती है, जितना भी तकलीफ दे वो गुजर जाती है। सो औरतों का और दर्द का और पेन का बचपन से साथ शुरू होता है, और वो उनके तकरीबन मरने तक साथ रहता है। तो इसलिए हम लोग के अंदर उस चीज़ की एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत डिफरेंट है, और हम शायद हमें बचपन से आदत पड़ती है इस चीज़ को चैलेंज करने की, चैलेंज को लेने की, और उसके आगे गुजरने की, उसके बाद की ज़िंदगी को और आसानियों को इंजॉय करने की।
अच्छा, फील्ड में आ गई आपको, आपने एक सोचा और आपने इसके अंदर आने के बाद काम के दौरान आपको लगता है कि ज़्यादा हर्डल्स हैं ख़वातीन के लिए मर्दों की नस्बत काम जब शुरू कर देती हैं वो?
बिल्कुल है, क्योंकि देखिए जो आपके कंटेम्प्रेरीज है ना, वो उनके अंदर एक्सेप्टेंस कम है। जैसे मैंने अभी कहा कि आदमियों के अंदर एक्सेप्टेंस अगर आ जाए इस बात की, सिर्फ एक्सेप्टेंस चाहिए, हमें उनसे कोई वो नहीं चाहिए कि वो हमें हमारे हकूक दे दे। वी डोंट वांट देम टू गिव अस एनीथिंग, वी वांट देम टू एक्सेप्ट इट दैट वी आर इक्वली एम्पावर्ड और इक्वली अवेयर, यू नो। वो इम्पॉर्टेंट है कि उनको ये बात समझ में आए, और जब आप उधर पहुंचते हैं या थोड़ा सा बराबर या आगे निकलने लग जाते हैं तो तकलीफ वहां पे शुरू होती है। जब तक आप नीचे के प्लेयर हैं इतना मसला नहीं रहता, लेकिन बराबरी और फिर आगे बढ़ना, ये दो जगह हैं जहां पे आपको लगता है कि एक्सेप्टेंस पे प्रॉब्लम आती है। और मुझे ये लगता है कि इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अपनी डायरेक्शन में देखें और ये देखें कि उस प्रोफेशन में एज अ प्रोफेशनल किस चीज़ की ज़रूरत है, रादर देन यू नो इस चीज़ को देखना कि आपका जेंडर उस चीज़ के लिए आपको अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि जब अल्लाह ने आपको बनाया है, उसने आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आपकी तख्लीक के अंदर डाली हैं जिनके बारे में आपको खुद अपने ग्रोथ के साथ साथ पता चलता है कि अरे अल्लाह ने तो मुझे इसका भी बनाया, अल्लाह ने तो मुझे इसका भी बनाया, अल्लाह ने मुझे इसका भी बनाया। सो वो डाउट रखना अपनी ज़ात के अंदर मुझे लगता है लड़कियों को निकाल देना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि कुछ मिरेकल्स हैं जो औरतों के अंदर हैं और जो वक्त के साथ साथ उनके ऊपर जाहिर होते जाते हैं और उनकी पावर बढ़ती जाती है।
बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि फिल्म प्रोड्यूसर खातून का होना चाहिए, तो आपको लगता है कि वो बेहतर प्रोड्यूसर होती हैं बिकॉज वुमेन आर गुड मैनेजर्स?
और उसके साथ साथ हम सब एक प्रोफेशन के अंदर उस जगह पे कोई सेक्रेटरी भी होती है, कोई सीईओ भी होती है, कोई इंजीनियर भी होती है, कोई पायलट भी होती है, लेकिन वो सब चीज़ों के साथ साथ उसका शोभा जो होता है उसमें कहीं कमी नहीं आ रही होती, बल्कि वो उसके अंदर और सारा शाइन आउट कर रही होती है। तो ये जो मल्टीटास्किंग की एक चीज़ है जिसको हम बारहा रिपीट करते हैं कि औरतों के बारे में, इसको तो अब कहना ज़रूरी ही नहीं है, तो अंडरस्टूड सी बात है। जो मैंने कहा मिरेकल्स हैं हमारे अंदर, उनमें से एक मिरेकल ही है। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो कि अल्लाह ने औरत को नवाजा हुआ है, जिसके बारे में मैं खुद यानी कि हैरान होती हूँ। टाइम मुझे अपने अंदर, अपनी बेटियों के अंदर, अपनी वालदा के अंदर जब देखती हूँ, वक्त गुजरने के साथ साथ जो एक खूबसूरती और पुख्ती और जो एक कमाल उनकी पर्सनालिटी में विद टाइम आता जा रहा है अपनी अपनी डोमेन्स में, वो अनबिलीवेबल है। यानी कि औरतों पे खिजा नहीं आती, औरतें जो होती हैं वो माशाल्लाह से, वो उनका हर सीजन जो है ना, आफ्टर सीजन, वो उनकी जो मेचोरिटी है उसका एक शेड है, और शेड के अंदर से बाहर है। यानी कि वो अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी चीज़ है, यानी कि जब वो बेटी होती है, जब वो बच्ची होती है, जब वो माँ होती है, जब वो बहन होती है, जब वो बीवी होती है, जब वो नानी होती है, जब वो दादी होती है, ये तो पर्सनल रिश्ते हो गए। अब इसी तरह से कि जब वो काम करना शुरू करती है, जब वो किसी एक स्टेप आगे बढ़ती है, फिर जब वो उससे आगे बढ़ती है, जब वो बॉस बनती है, जब वो सबॉर्डिनेट होती है, जब वो एम्प्लॉयर होती है, जब वो एम्प्लॉय होती है, हर शेड में वो मतलब आउटशाइन कर देती है दूसरों को। ये तो एक ऐसा जूल है जो अल्लाह ने औरत को इस तरह का एक मतलब समझ लीजिए पर्ल की तरह की, यू नो,
बिल्कुल
वो जब आहिस्ता आहिस्ता उसकी एक खूबसूरती बढ़ती जाती है।
जबरदस्त बात की आपने। अच्छा, लेकिन ये बताएं कि औरत हमारी या खवातीन जो है, जब वो प्रोफेशनल लाइफ में आती हैं तो कहीं ना कहीं वो अपनी जात को जो है ना वो चैलेंज कर रही होती हैं, तो ये कितना जरूरी है कि आपकी जात भी आपके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है कि औरत अपनी, जैसे आपने कहा ना, वो तनहा नहीं होती, उसके अपने अंदर एक अपनी दुनिया होती है उसकी, तो वो उस दुनिया के अंदर अपनी जात के अंदर रहते हुए पूरा एक माशरे को भी अगर उसको लेके चल रहा है, तो वो उसके लिए आप क्या नौजवान खासतौर पे लड़कियों को क्या मैसेज
मुझे
देंगे?
ऐसा लगता है कि एक तो कोई कोई और पहरहन पहनने की, कोई और पर्सनैलिटी बनने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि, और ये बात मुझे भी वक्त के साथ समझ में आई, जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता है थोड़ा सा मर्दाना स्टाइल से काम करने
हाँ
से शायद आसानी रहती है, या
हाँ
आदमी जो है वो आराम से आपकी बात को समझ जाते हैं। लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि जिससे समझना है वो तो आपकी बात आपकी जबान में समझ ही जाएगा, उसके लिए आपको अपने आप को तब्दील करने की जरूरत नहीं है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लड़कियां जो वो हैं उसमें किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस में आके अपनी पर्सनैलिटी को चेंज ना करें। जैसे आप हैं, अल्लाह ने आपको जैसा बनाया उसको आप एम्ब्रेस करें। और साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपनी ज़ात को एक प्रायोरिटी पे रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम बहुत पीछे डाल देते हैं, बहुत ही पीछे, यानी कि लास्ट। ये बाय डिफॉल्ट भी औरतों में होता है कि वो अपने आप को प्रायोरिटी पे नहीं रख सकती। एज अ मदर अगर आप अपना रोल देखें, या इवन एज अ बॉस जब भी आप देख रहे होते हैं, आपको लगता है कि यार यू नो अदर्स कम फर्स्ट। मुझे लगता है कि मे बी यू कैन कम विद देम, यू नो मे बी अगर हम सोच रहे हैं दूसरों के बारे में तो उन्हीं सब के साथ हम भी खड़े हो जाएं। अपने आप को पीछे डालने के बजाय सिर्फ ज्वाइन कर लें, आगे ना निकलें। अगर आपको लगता है कि यार नहीं मैं पहले आ जाऊँ और बाकी पीछे रह जाएं तो गलत हो जाएगा। सही है, कभी कभी हमारे मोरल्स इतने हाई होते हैं हम नहीं कर पाते, लेकिन एटलीस्ट ज्वाइन देम इन हैप्पीनेस, इन जॉय, इन शेयरिंग, सो दैट आप भी उस खुशी का हिस्सा बनी रहें जो खुशी आप बांट रही हैं। सारा बांट देंगे तो थोड़ा सा उसके अंदर उसी
बिल्कुल।
को शेयर भी कर लें साथ साथ।
आप नई लड़कियों के लिए क्या कहेंगी कि वो इसमें आए और ये इसको ज्वाइन करें, और इसके चैलेंजेस क्या होंगे उनके लिए?
एक ऐसा शोभा है जो अब बहुत दुनिया इसके इसको जानती है इसके बारे में, और फिल्म मेकिंग एक ऐसा शोभा है जिसको बहुत लड़कियां परसू कर रही हैं ऑलरेडी। हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी अब एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है और लोग उसको स्पेशलाइज कर रहे हैं। और जो लड़कियां इस शोबे की तरफ आ रही हैं, मेरा सिर्फ उनसे एक ही चीज़ का कहना है, जैसे कि मैंने कहा कि जल्दी में ना आए, कंसिस्टेंसी इज इम्पॉर्टेंट, फेलियर इज पार्ट ऑफ योर जर्नी। आप जब तक फेल नहीं होंगे आपको पास होने का पता ही नहीं चलेगा, तो जल्दी हिम्मत ना हारे। और जहाँ तक हमारे जो मर्द साथी हैं और जो सोसाइटी का एक हिस्सा है जो आपके इर्द गिर्द हैं, अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि वो आपको किसी तरह से प्रेस कर रहे हैं, तो आप वोकल रहें इसके बारे में, आप बात करें इसके बारे में, और आप उनको बताएं कि आपको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है। और कभी कभी हम मिसअंडरस्टैंड भी कर जाते हैं, ऐसा नहीं है। और अगर आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे होंगी तो अगर सामने वाला ये चीज़ नहीं कर रहा वो खुद इस चीज़ को क्लियर करेगा। और एज अ ह्यूमन हमें चाहिए कि अगर कोई क्लैरिटी दे रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट करें, लेकिन अगर रिपीटेडली कोई चीज़ आपको फील हो रही है सो प्लीज़ उसके बारे में बात करें और अपनी जगह पे डटी रहें।
शुक्रिया बहुत बहुत फिजा।
SBS उर्दू, SBS साउथ एशियन पर।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तबसरा कीजिए, फेसबुक पर SBS उर्दू फॉलो कीजिए।